श्रील शिवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, तो ये चैतन्य चरितामृत से हम लोगों ने प्यार लिया है। यादि लीला है भाग एक और प्यार संख्या है 38, तो हम उसको दोहराए कृपा करके। इसमें तात्पर्य नहीं है कि शिवास पंडित के बारे में है, तो उसमें इसलिए ये लिखा गया है। भगवान भक्त जत शिवास प्रधान असभार पाद पद में सहस्त्र प्रणाम। भगवान भक्त जत शिवास प्रधान असभार पाद पद में सहस्त्र प्रणाम। भगवान भक्त जत शिवास प्रधान असभार पाद पद में सहस्त्र प्रणाम। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने जो किया है वो इस प्रकार से है, फिर हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। देर आर इनमरेबल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड ऑफ होम शिवास ठाकुर इज द फॉरमोस्ट। आई ऑफर माई रेस्पेक्ट फॉर ओबेसेंसेस थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स अंटिल देयर लोटस फीट। ये बता रहे हैं कि असंख्य भक्त हैं भगवान के, श्री चैतन्य महाप्रभु के, उसमें से शिवास पंडित प्रधान हैं, और उन सब के चरणों में मैं सहस्त्र प्रणाम अर्पित करता हूं। तो ये श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। तो शिवास पंडित पंचतत्व में से एक है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, पंचतत्वात्कम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इसमें जो भक्त रूप है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु, और भक्त स्वरूप है नित्यानंद प्रभु, और भक्त अवतार है अद्वैत आचार्य, भक्त आख्यम है शिवास पंडित, और भक्त शक्तिकम है गदाधर पंडित। तो शिवास पंडित जो है, ये बताया गया है गौर गणेश दीपिका में कि नारद मुनि के अवतार हैं, लेकिन अगर हम लोग और गहराई से सुसमझने का प्रयास करें तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि नारद मुनि जो है वो शिवास पंडित के अवतार हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वैकुंठ से ऊपर, कहीं ऊपर जो है वो गोलोक धाम वृंदावन है, और गोलोक धाम जो है वो दो भागों में विभाजित है, एक है नवद्वीप और एक है ब्रज गोकुल। तो जितने भी अवतार या विस्तार है वो सब गोलोक धाम से ही हो रहे हैं। तो शिवास पंडित भी उधर ही हैं नवद्वीप में, वहां नवद्वीप को श्वेत द्वीप भी कहा जाता है। तो इस प्रकार शिवास पंडित जो है वो पंच तत्व में से एक है, और शिवास पंडित जो है का आश्रय लिया जाता है शुद्ध नाम के लिए। ये पंचतत्व में जितने भी हैं उन सब का आश्रय लिया जाता है किसी विशेष कारण से। श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया जाता है रस आश्रय के लिए, नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिया जाता है प्रेम आश्रय, गदाधर पंडित का आश्रय लिया जाता है भाव आश्रय, अद्वैत आचार्य हमें वैदिक साधना से राग मार्ग में ले जाते हैं। तो इस तरह से ये पंच तत्व है। तो शिवास पंडित के बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है श्री चैतन्य चरितामृत में, और प्रत्येक वर्ष हम लोग जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं तो अंतरद्वीप में शिवास पंडित के घर पे जाते हैं, और इस शिवास पंडित के घर पे बहुत सारी लीलाएं हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां पर आते थे और कई लीलाएं समर्पण करते थे। शिवास पंडित का जो स्थान है ये रासस्थली से अभिन्न है, ब्रज की जो है रासस्थली से अभिन्न है, इसलिए ही बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ये वो स्थान है जहां से संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन हुआ। तो कई लीलाएं यहां पर हुई, हम उन लीलाओं की चर्चा करेंगे। तो शिवास आंगन वो स्थान है जहां प्रत्येक दिन संध्या के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की आरती होती है। रोज हम लोग संध्या के समय आरती गाते ना, कि बजाया जया गौरा चांदे आरती को शोभा। तो ये शिवास पंडित के घर पर ठाकुर भक्ति लोग जो है लीलास्पण में देख रहे हैं कि संध्या के समय जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की आरती हो रही है। तो शिवास पंडित के घर पे ये गौरव महाप्रभु की आरती होती है। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं में उन्होंने ऐश्वर्य बहुत कम प्रकट किया, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार हैं, भक्त रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाया, अपनी भगवत्ता को उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे विशेष स्थानों में उन्होंने किया, शिवास पंडित के घर पे किया और वहां उन्होंने अपना ऐश्वर्य भी दिखाया। क्यों ऐश्वर्य दिखाया उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे? क्योंकि वहां शिवास पंडित थे। अगर ये कहा जाए कि शिवास पंडित नारद मुनि है तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐश्वर्य भी देखना चाहेंगे, तो इस कारण से उन्होंने ऐश्वर्य प्रकट किया। तो ये जो शिवास पंडित का घर है ये कई लीलाओं का स्थान है। अब हम लोग एक एक लीला का वर्णन करते हैं। ये वो स्थान है जहां पर चांद काजी आए अपने सैनिकों के साथ और उन्होंने खोल को थोड़ा, खोल भांगार डांगा, इस स्थान का नाम है खोल भांगार डांग। तो यहां पर जो है खोल थोड़ा गया था, मृदंग थोड़ा गया, मृदंग संकीर्तन चल रहा था। किसी हिंदू ब्राह्मण, एक हिंदू ब्राह्मण नहीं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हिंदू ब्राह्मण ही था वो जिसने चांद काजी को जाकर शिकायत की कि ये लोग हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर देंगे, ये लोग जोर जोर से उच्चारण करते हैं हरिनाम और पूरी रात ये लोग कीर्तन करते रहते हैं और माने ना माने तो हमारे धर्म को तो खतरा ही है, आपके धर्म को भी खतरा है, इस्लाम को भी खतरा है, क्योंकि ये लोग बड़े तेजी से इस प्रकार चिल्ला चिल्ला के उच्चारण करते हैं। तो चांद काजी को जब लगा कि उनका इस्लाम धर्म भी जो है खतरे में है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसके लिए कुछ करेंगे। तो चांद काजी जो है फिर अपने वहां सैनिकों को लेके गए और श्री चैतन्य महाप्रभु तो वहां मौजूद नहीं थे, तो भक्तों को जो है बहुत तंग किया गया और उसके बाद मृदंग को भी तोड़ा गया। तो इस तरह जब चांद काजी के बारे में पता चला श्री चैतन्य महाप्रभु को कि चांद काजी आए थे और उसने मृदंग तोड़ा है और रुकावट डाली है संकीर्तन में, तो श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े क्रोधित हुए। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने लगभग 100,000 लोगों को इकट्ठा किया और पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप के सड़कों में संकीर्तन, नगर संकीर्तन करते हुए चांद काजी के बाद पहुंचे थे। अंतर्द्वीप में से निकले और सीमंत द्वीप में पहुंचे। तो यह भी एक प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर्द्वीप से, खैर ये आज की चर्चा नहीं है लेकिन आपको सिर्फ संकेत दे रहे, अंतर्द्वीप से सीमंत द्वीप पहुंचे। और चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य मंगल में, किसी भी ग्रंथ में यह नहीं बताया गया है कि चांद काशी के घर पर आने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु को गंगा जी पार करना पड़ा। इससे यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान पूर्वी दिशा में है। और अगर वर्णन अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से वर्णन होता, जैसे विद्यावाचस्पति के घर में जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत रुके थे तो हजारों हजारों की तादाद में भक्त जो है गंगा जी पार करके आए थे और गंगा जी में हर जगह भक्तों का सर दिखाई दे रहा था। तो इसका वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि गंगा जी पार किया भक्तों ने महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, क्योंकि इतनी तादाद में अगर 1,00,000 अगर लोग जिसमें अधिकांश भक्त थे अगर गंगा जी पार करके गए होते तो इसका वर्णन निश्चित रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते। तो कई ऐसे कारण हैं, यहां पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि चांदका जी का जो है वो स्थान जो है समाधि जहां पर है वो सीमंत द्वीप में है, ये तो सब जानते ही हैं, है ना। तो इस प्रकार चांदका जी का उद्धार किया बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने, इसका हम लोग विस्तार से वर्णन नहीं कर रहे यहां पर। और उसके अलावा महाप्रकाश लीला हुई, श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला, ये भी शिवास पंडित के घर पे हुई। इसको कहते हैं शत प्रहरीय लीला। शत प्रहरीय लीला का मतलब है कि 21 घंटे लगातार महाप्रकाश दिखाया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, अपना ऐश्वर्य दिखाया और विष्णु सिंहासन में बैठे और उनका अभिषेक भी हुआ था शिवास पंडित के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक भी किया गया था और विष्णु सिंहासन में बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु सबको कृपा बरसा रहे थे। और क्या कृपा कर रहे थे? सबको भगवत प्रेम दे रहे थे, है ना। शत प्रहर लीला, 21 घंटे लगातार श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको वरदान दिया। और जब शची माता की बारी आई तो शची माता के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का नहीं, इनको जो है मैं नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध किया है। क्या अपराध किया है? शची माता के मन में विचार आया, ये शिक्षाप्रद कथा है। शची माता तो जगत माता है, स्वयं माता यशोदा है, वो कैसे अपराध कर सकती? कोई अपराध नहीं कर सकती, लेकिन हम सबके लिए शिक्षा लोक शिक्षा है भक्तों के लिए। तो शची माता के मन में विचार आ गया, क्या विचार आया कि अद्वैत आचार्य के पास मेरा बड़ा जो लड़का है वो जाता था विश्वरूप प्रत्येक दिन। हमें पता होना चाहिए कि जब तक चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास नहीं ले लिया था और नबी छोड़ के नहीं चले गए थे, अद्वैत आचार्य शिवास पंडित के घर के ही नजदीक रहते थे, अद्वैत भवन जिसको कहते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं शांतिपुर कैसे गए होंगे, रोज शांतिपुर कैसे जाते होंगे, तो शांतिपुर में नहीं थे उस समय, वो नवद्वीप में ही थे अद्वैत आचार्य। और अद्वैत भवन जो स्थान है वहीं पर अद्वैत आचार्य रहते थे, वहीं रहकर ही जो है उन्होंने गंगा जल तुलसी दल से भगवान शालिग्राम शिला की सेवा की थी। श्री राधिका रमन की जय, जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण राम श्री गौरथाय की जय। तो अद्वैत आचार्य के बारे में ऐसा विचार आया शशि माता को कि देखिए अद्वैत तो केवल नाम सही है लेकिन इनके भीतर जो है द्वैत भरा हुआ है, क्योंकि विश्वरूप जो है प्रत्येक दिन जाता था और इनसे कृष्ण कथा सुनता था, क्योंकि विश्वरूप ने प्रत्येक दिन जाकर अद्वैत आचार्य का संग किया इसलिए वो मुझे छोड़ के चला गया, संन्यास लेके चला गया। अब ऐसा ना हो कि निमाई भी अद्वैत आचार्य का संग करे और ये भी ऐसा ना संन्यास लेके चला जाए, तो ऐसा उनके मन में था। ये है ममत्व की भावना, ये जो विशेषता है ब्रज में दिखाई पड़ती है कि ब्रज के जो भक्त है उनमें ममत्व होता है, एक पॉसेसिव मूड होता है कृष्ण के लिए। तो इसी तरह से शची माता के भी उनके लिए भी पोसेशन थे, उनके लिए उनके हृदय में आत्मीयता थी श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो शची माता जो है उस प्रकार जब विचार किया तो चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा कि मन में उनके विचार ऐसा क्यों आ रहा है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं उनको कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। तो बाद में फिर अद्वैत आचार्य को भक्तों ने बुलाया तो अद्वैत आचार्य वहां पर आए और आते ही शची माता का उन्होंने गुणगान करना शुरू कर दिया। जब शची माता का गुणगान किया तो अद्वैत आचार्य जो है भावावेश में वो गिर पड़े और जमीन में लौटने लगे। ऐसे में शची माता ने देखा यही मौका है, अद्वैत आचार्य के चरणों की धूली लेकर अपने मस्तक पर लगा ली और इस तरह से शची माता जो है अपराध से मुक्त हो गई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब मैं इनको कृष्ण प्रेम दूंगा। तो ये शिक्षा प्रद कथा है जिसके द्वारा हम सब भक्त लोग जो है सीख सकते हैं कि ऐसा अपराध हम लोग ना कर बैठे और ये भी दिखाता है कि उन्नत से उन्नत कोई भक्त क्यों ना हो, अगर वो वैष्णव प्राप्त करता है तो फिर वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कृष्णदास कविराज बता रहे हैं कि कई रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, भक्ते कृपा कुरेना प्रभु यही तीन स्वरूपे साक्षात आवेश आर आविर्भाव रूपे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तीन रूप में प्रकट होते हैं, तीन तरीके से प्रकट होते हैं। एक साक्षात, साक्षात का मतलब है उनका अपना आविर्भाव, जहां पे श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं दिखाई पड़ते हैं, साक्षात दिखाई पड़ते हैं। भक्त लोग देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, उन्होंने लीलाएं प्रकट की अपनी, तो उस समय सब देख सकते थे, है ना। तो इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु का साक्षात आविर्भाव, साक्षात रूप से प्रकट होना। और दूसरा बताया जाता है आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब है व्यक्त होते हैं, व्यक्त होते हैं कई ऐसे स्थानों में जो स्वयं तो नहीं, साक्षात रूप में नहीं है, लेकिन भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वहां प्रकट हो जाते हैं। जैसे खेतुड़ी ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर ने गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया है कि नहीं, तो उस समय पंचतत्व वहां पर प्रकट हो गए, इसको कहते हैं आविर्भाव, आविर्भाव। इसी तरह से शशि माता के घर में भी प्रकट हो जाते थे, यानी जगन्नाथ मिश्र अपने ही घर में प्रकट हो जाते थे। कब प्रकट हो जाते थे? शशि माता भोग लगाती थी, और जब भोग लगाते थे श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं आकर उस भोग को स्वीकार करते थे, वो अपनी आंखें बंद करते और जब भोग लग जाता तो देखते कि वहां पर तो पूरा भोग श्री चैतन्य महापुरुष स्वीकार कर लिया। तो ये भी एक तरह का आविर्भाव है। इसी तरह से राघव पंडित के स्थान में भी श्री चैतन्य महापुरुष प्रकट हुए थे पानीहाटी महोत्सव में, वो भी आविर्भाव है। और जहां पर नित्यानंद प्रभु भी अपनी लीलाएं करते हैं तो वहां पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। आवेश का मतलब है किसी भक्त के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, आवेश, श्री चैतन्य महाप्रभु का आवेश आ जाता है। जैसे नकुल ब्रह्मचारी हैं, उनमें आवेश आ गया, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को सत्यवेश कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु का आवेश है श्रील प्रभुपाद जी। इसे कई बार प्रभुपाद को नित्यानंद प्रभु का भी आवेश अवतार बताया जाता है। तो आवेश, तो आवेश का मतलब यह होता है कि वो भक्त जो है वो फिर भगवान का ही कार्य करता है। भगवान जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को पूरा करता है वो भक्त, श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करता है, उनकी अंतरंग इच्छाओं को पूरा करता है, तो उसको कहते हैं आवेश। तो इस तरह से आवेश और आविर्भाव और साक्षात, इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो श्रीवास पंडित का घर भी एक स्थान है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है, प्रकट होते हैं, जब जब श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन लीला होती है। तो ये वो स्थान है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने चतुर्भुज मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, और जब चतुर्भुज मूर्ति के रूप में प्रकट हुए तो श्रीवास पंडित जो है, सॉरी क्षमा करिए, मुरारी गुप्त जो है वो गरुड़ जी बन गए। और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर चढ़ गए। गरुड़ जी के पीछे ही भगवान चढ़ते हैं, उनका वाहन है। और इसके अलावा अद्वैत आचार्य ने फिर प्रार्थना की थी, या शशि माता के जो अपराध से मुक्त हुए थे, अद्वैत आचार्य ने इसके बाद जो है श्री चैतन्य महाप्रभु से विराट रूप दिखाने के लिए कहा था। विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया था भगवान कृष्ण ने, हालांकि भगवान ने बोल दिया था अर्जुन को कि ये जो मैं रूप दिखा रहा हूं ये रूप किसी ने नहीं देखा, ना कोई भविष्य में देखेगा, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो दिखा दिया अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य को ये दिखाया, विराट रूप दिखाया। इसके अलावा सुभाष पंडित के घर में कई और षटभुज रूप दिखाई दिए। एक षटभुज रूप था जिसमें शंख चक्र गदा पद्म था, और साथ में कमान भी था, और साथ में बांसुरी भी। यानि चतुर्भुज विष्णु और श्री कृष्ण साथ में ये रूप दिखाया। ऐसे कई जगह पे दिखाया गया। इसी तरह से जो वो ब्राह्मण आया था, वो कथा तो आप जानते होंगे कि ब्राह्मण जो है गोपाल जी को भोग लगाता तो मां चैतन्य महाप्रभु पहुंच जाते भोग को स्वीकार करने के लिए, कि वहीं जाके स्वयं खा लेते वो। तो ब्राह्मण को भी उन्होंने दिखाया था इस तरह का षटभुज रूप, चतुर्भुज विष्णु का और साथ में श्री कृष्ण एक साथ, और एक षटभुज रूप जो कहां दिखाया, श्री चैतन्य महापुरुष सार्व भट्टाचार्य को जगन्नाथ पुरी, उसी तरह का जो है षटभुज रूप यहां पर भी दिखाया था श्रीवास पंडित के घर पे, जिसमें हमारे श्री राम का जो है रूप बाण और कमाल, साथ में संन्यास दंड और कमुंडल, और साथ में श्री कृष्ण का। तो इस तरह से षटभुज रूप जो है यहां में दिखाया गया था चैतन्य श्रीवास पंडित के घर पे। तो लगातार एक साल, पूरे एक साल लगातार संकीर्तन चलता रहा रात को। और जब चैतन्य महापुर देखा कि भक्त लोग काफी थक गए हैं संकीर्तन करते करते, तो उन्होंने वो आम का पेड़ वहीं उगा दिया। एक आम का पेड़ कहां होगा, एक आम का पेड़ जो है कहां उगाया था उन्होंने, आम घाट में है। आम घाट कहां पर है, गोद्रुप द्वीप में है। तो इसी तरह से यहां पर विश्वास पंडित के घर पे भी एक आम का पेड़ उगाया, जिसमें कई आम निकले, लगभग 200 आम निकले बिना छिलके के और बिना गुठली। उसको तोड़ो और सीधा खा जाओ, छीलने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आम का पेड़ उगाया, ये चमत्कार दिखाया। और इसके अलावा एक बार क्या हुआ कि श्रीवास पंडित को श्री चैतन्य महापुरु ने बृहत विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करने का, तो बृहत विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण जब किया तो उसमें नरसिंह भगवान का नाम आया। जब नरसिंह भगवान का नाम आया तो श्री चैतन्य महाप्रभु भाववेश में आ गए, और नरसिंह भगवान के आवेश में आ गए, नरसिंह आवेश में आ गए श्री चैतन्य महाप्रभु, और गदा लेके जो है नवदीप की सड़कों में भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि वहां जितने भी विषयी लोग हैं या आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उन सबका संहार कर देंगे, और चैतन्य महाप्रभु बड़ी तेजी से भागे जा रहे हैं नवदीप में। सब लोग देखकर उनको भयभीत हो रहे हैं, भक्त लोग देखे क्या हो गया, सब लोग भयभीत हो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु देखा कि सब लोग डर रहे हैं, सब लोग भयभीत हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने आवेश को काबू में किया। और बाद में जब आए चैतन्य महाप्रभु बोले, श्रीवास पंडित से मुझसे लगता है बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे कारण सब भयभीत हो गए हैं। तो श्रीवास पंडित ने कहा कि आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, जो भी आपका नाम लेता है वो भवबंधन से छुटकारा पाता है ना, और जिसने भी आपका इस रूप में दर्शन किया है वो तो भवसागर को पार कर चुका है। तो इस तरह से नरसिंह भगवान का आवेश दिखाया उन्होंने। और एक बार एक औरत थी जिसका नाम था दुखी, प्रत्येक दिन वो भक्तों के लिए गंगा जल लेके आती थी, भक्तों की सेवा के। उसकी बड़ी सरल सेवा थी, है ना, वो संकीर्तन में नहीं थी, बहुत सरल सेवा थी, गंगा जल लेके आ, गंगा जल आके रखते थे वो। तो संकीर्तन चल रहा था, चैतन्य महापुरुष ने देखा कि प्रत्येक दिन भक्तों की सेवा करती है, गंगा जल लेकर आती है चैतन्य महापुरुष, लेकिन दुखी लगती है देखने में। चैतन्य महापुरुष ने दृष्टि डाली और चैतन्य महापुरुष ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम दुखी नहीं है, तुम्हारा नाम सुखी है। हरी हरी। तो इस तरह से दुखी जो है वो सुखी हो गई। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे आंदोलन में भक्त लोग कई तरह की सेवाएं कर रहे हैं, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई टॉयलेट साफ कर रहा है, है ना, हर प्रकार की सेवा में लगे, कोई पुस्तक वितरण कर रहा है, तो इससे कई प्रकार की सेवाओं में भक्त लगे हैं। तो जिस तरह से चैतन्य महापुरुष ने दुखी के ऊपर नजर मारी, इसी तरह से चैतन्य महापुरुष संकीर्तन आंदोलन में जुड़े हुए भक्तों के ऊपर भी दृष्टि डालते हैं, और जैसे ही दृष्टि डालते हैं वो सारे भक्त जो दुखी है वो सब सुखी हो जाते हैं। हरी हरी। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य चंद्रावत में कहा है, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि। बहुत सुंदर श्लोक है, तो ये श्लोक सबको पता होना चाहिए। इस श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितनी मात्रा में आप श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेंगे, जितनी मात्रा में आप चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जुड़ेंगे उतनी मात्रा में क्या होगा, राधा पदाम भोज सुधामु राशि, यानी कि मतलब यह है कि श्रीमती राधा रानी की उतनी ही कृपा मिलेगी, उतने ही उनके चरणों का रसामृत का पान कर सकते हैं आप जितनी मात्रा में आप चैतन्य महाप्रभु की शरण लेंगे। तो इसका अर्थ यह है, प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर ये बताना चाह रहे हैं कि जितनी मात्रा में आप चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जुड़ेंगे उतनी मात्रा में आपके लिए श्रीमती राधारानी ब्रज में नित्य सेवा प्रदान करें। इसलिए ब्रज के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, आप केवल महाप्रभु के आंदोलन में जुड़े रहे, महाप्रभु की सेवा में लगे रहे, महाप्रभु के बारे में श्रवण करें, गौर कथा श्रवण करें, नवदीप मंडल परिक्रमा करें, आप ब्रज में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आप देखते हैं नवदीप मंडल में जब जाते हैं तो 12 वन वहां पे उपलब्ध है, वहां पे मौजूद है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? अंतः कृष्ण बहिर्गौ, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो इसलिए ठाकुर भक्ति नवदीप बता रहे हैं चैतन्य शिक्षा व्रत में, इस तरह से जब महाप्रभु की सेवा कोई करता है जीवन भर लगा रहता है तो अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु उस भक्त को राधा कृष्ण का रूप दिखाते हैं और इस तरह से वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भक्त जो है ब्रज में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार दुखी जो है सुखी हुई और एक बार श्रीवास पंडित की सास वहां पर मौजूद हो, वो पात्रता उनमें थी नहीं कि वो संकीर्तन महाप्रभु का संकीर्तन, ये जो संकीर्तन था ये बहुत ही गुह्यतम पार्षदों के लिए था, सबके लिए नहीं, ये पब्लिक के लिए नहीं था ये संकीर्तन। उस समय जो संकीर्तन वो सब इंडोर होता था, आउटडोर संकीर्तन नहीं हो रहा था, नगर संकीर्तन प्रारंभ नहीं हुआ था, तो भीतर ही भीतर संकीर्तन चल रहा था। तो इनके श्रीवास पंडित की जो सास है वहां छुप के टोकरी के अंदर जो है छुप के टोकरी से अपने आप को ढक लिया और छुप छुप के वो देख रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को लगा कि क्या है, कुछ कारण है यहां पर, कोई ऐसा लगता है कि कोई अयोग्य व्यक्ति जो है यहां पर घुस चुका है शिवास पंडित के घर, इसलिए मुझे इतना आनंद नहीं आ रहा है। तो उन्हें टोकरी हटा के देखा कि वहां पर शिवास पंडित की सास है, उन्हें कहा नहीं आप जाइए यहां से, है ना। तो उनको वहां से भेज दिया गया, उनको वहां पर पात्रता नहीं मिली, पात्रता थी नहीं उनके पास, इसलिए देखने का अवसर नहीं प्राप्त। इसलिए इससे पता चलता है कि जब तक पात्रता ना हो हम भजन नहीं कर सकते, पात्रता जब तक ना हो आप सेवा नहीं कर सकते। जिस तरह से आप एक प्लास्टिक के कटोरे में, प्लास्टिक का कटोरा बहुत हल्का सा प्लास्टिक है और उसमें आप गरम गरम खोलता हुआ घी डाल दें तो क्या होगा, वो पात्र फट जाए। इसी तरह से जब तक पात्रता ना हो और हम खूब भजन करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए पात्रता की आवश्यकता है। तो ये उस तरह से फिर उनको वहां से भेज दिया गया। एक और ब्रह्मचारी वहां मौजूद हो गए, ब्रह्मचारी आए शिवास पंडित के घर पे। ये ब्रह्मचारी प्रत्येक दिन जो है दूध पीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे और शिवास पंडित से उन्होंने प्रार्थना की थी कि मैं इस संकीर्तन को देखना चाहता हूं, नृत्य को देखना चाहता हूं महाप्रभु के। उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा ठीक है देखो दीवार में छिद्र है यहां से देख लेना। तो जब वो देखना शुरू किया तो चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया कोई बाहर से देख रहा है। चैतन्य महाप्रभु तुरंत जो है नृत्य बंद कर दिया। उन्होंने कहा कौन है यहां पर, कौन देख रहा है इसको संकीर्तन को? तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए। तो चैतन्य महाप्रभु से कौन है शिवास? तो शिवास ने कहा कि महाप्रभु एक जो है ब्रह्मचारी है वो आपके संकीर्तन नृत्य को देखना चाहता था, बुलाओ उसको। तो बुलाया गया, ब्रह्मचारी को बुलाया गया। तो ब्रह्मचारी से कहा कि आप छुप के देख रहे थे? तो उन्होंने कहा महाप्रभु मैं तो अपना जीवन दूध पीकर बिता रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर दूध पीकर ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया होता तो हमसे दूध ही पी रहे होते फिर श्रवण कीर्तन की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा यह योग्यता नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, जाओ यहां से। तो ब्रह्मचारी बहुत दुखी हुआ। ब्रह्मचारी सोचने लगा कि इतना अच्छा अवसर मिला था, अब यहां से मुझे भेज रहे हैं महाप्रभु। उन्होंने फिर महाप्रभु की शरण ली। वो नम्र बन गया, गिड़गिड़ाया उसने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इससे पता चलता है कि जब तक योग्यता ना हो, पात्रता ना हो, हम लीला में प्रवेश नहीं पा सकते। लेकिन लीला में प्रवेश पा सकते हैं आप एक माध्यम से, श्रवण के माध्यम से। जब हम भक्तों से, प्रणयी भक्त जो है भगवान के, जब वो गौर लीला सुनाते हैं, गौर कथा सुनाते हैं, तब हम भी इस लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं श्रवण के माध्यम से। तो ये कुछ लीलाएं थी जो शिवास पंडित के घर में खड़ित हुए, और इन सब लीलाओं का बड़ा ही विस्तार से विविध वर्णन किया है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। एक कथा ये भी है कि एक बार माली देवी ने कटोरा रखा हुआ था, जो कि विग्रह की सेवा में था, वो घी का कटोरा था। तो एक कौवा आया और कटोरे में लेके चला गया। वो कटोरे में जब लेके चला गया तो माली जी बहुत परेशान हुई, उनका शिवास आएंगे, शिवास ठाकुर आएंगे, वो बहुत नाराज होंगे, मैं क्या करूं। तो नित्यानंद प्रभु वहां पहुंच गए, और नित्यानंद प्रभु जब वहां पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु से कहा कि ऐसा हो गया है, शिवास बहुत नाराज होंगे, वो कौवा आया था, कटोरा उठा के ले गया। तो नित्यानंद प्रभु, आप चिंता क्यों करते हो, है ना, हाँ उसको कौवे को वापस बुला लेते हैं। तो नित्यानंद प्रभु उस कौवे को वापस बुलाया और कौवा कटोरा लेके वापस आ गया। और ये वो स्थान है जहां पर नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा मनाई गई थी शिवास पंडित के घर पे। लेकिन बाद में फिर नित्यानंद प्रभु ने वो जो माला है जो श्री चैतन्य महाप्रभु को बनाए इस व्यास पूजा के उपलक्ष्य में, और इस तरह से शिवास पंडित जब आ रहे थे तो कई जैसे ब्राह्मण थे वो द्वेष करते थे। उन्होंने सोचा ये शिवास जो है पता नहीं क्या करता है घर में, रोज जोर जोर से चिल्लाते हैं, इसके आवाज आती है इसके घर से, लगता है ये लोगों को भूत पिशाच पकड़ लिया है, कोई तंत्र मंत्र विद्या सीखी है इन लोगों ने, या तो इनको कुछ खाने को मिलता नहीं, पूरी रात चिल्लाते रहते हैं। तो कई ब्राह्मण से द्वेष कर रहे थे। एक ब्राह्मण का नाम था गोपाल चापल। ये गोपाल चापल जो है काली को उपासक, उसने क्या किया, काली पूजा के लिए जो सामग्री होती है वो सारे सामग्री जो है शिवास पंडित के घर के बाहर रखते, उसमें मदिरा भी था और लाल रंग का जो है कुमकुम भी था जो काली जी की सेवा में लगता है, वो सब लगा दिया। शिवास पंडित प्रातःकाल उठे, दरवाजा खोला, तो दरवाजा जो खोला उन्होंने कहा, रे देखो देखो, आप सब देखिए, मैं तो काली का उपासक हूं, मैं तो ढोंगी हूं, आप सब मुझे कृष्ण भक्त कहते हैं, ये देखो क्या हो रहा है। तो कुछ ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, कौन है ये जिसने ऐसा किया है। तो फिर वहां पर फिर गोबर का लेप लगा के उसकी सफाई करवाई, उस स्थान को फिर से स्वच्छ बनाया गया। तो गोपाल चपल जब उसने ऐसा कर दिया तो बहुत जल्द ही लगभग 3 दिन के भीतर उसको कोढ़ का रोग हो गया, भयानक कोढ़ का रोग हो गया। और गोपाल चपल फिर घबरा गया, क्या करूं क्या करूं। वो चैतन्य महाप्रभु के पास गया, चैतन्य महाप्रभु से कहा, महाप्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे कोढ़ का रोग हो गया है, बचाइए बचाइए। उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता हूं, और मैं तो ये चाहूंगा कि तुम लाखों जन्म तक जो है नरक में सड़ो, और ये भी चाहूंगा कि तुम्हें तो है कीड़ों के सारा काटा जाए। तो इसलिए आदर्श बहुत चिंतित हो गया, भयभीत हो गया। तो उसका क्या उपाय है, मैं कैसे बच सकता हूं। तो गोपाल चपल क्षमा याचना करने लगा, तो ठीक है जाओ शिवास के पास, शिवास से माफी मांगो। गोपाल चंद्र शिवास पंडित के पास गए और शिवास पंडित से जैसे ही क्षमा मांगी, शिवास पंडित ने कहा कि तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, चिंता ना करो। तो गोपाल चपल ने जब क्षमा मांगी तो क्या हुआ, गोपाल चपल का कोढ़ का रोग ठीक हो गया। हरि हरि। तो ये सभी जितने भी चैतन्य महाप्रभु की बड़ी विशेष कृपा हुई थी, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत जो है नवदीप में आए थे और विद्यावाचस्पति के घर पर रुके थे, तो विद्यावाचस्पति के घर पे रुकने के बाद वहां से वो देखा कि हजारों की तादाद में भक्त है, और चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को दर्शन भी दिया था, लेकिन वहां ज्यादा समय रुके नहीं। और वहां से श्री चैतन्य महाप्रभु कुलिया ग्राम चले गए, कुलिया ग्राम जहां पे कौलत हुई वहां चले गए, और उस स्थान में जिसको अपराध भजन कुलिया में कहा जाता है, उन्होंने जितने भी वैश्य अपराधी है सबको वहां पर क्षमा किया, उन सबका उद्धार किया। कहने का मतलब यह है कि कुलियाग्राम में सभी वैष्णव प्रादि आए हुए थे और उन सब ने क्षमा याचना की थी, महाप्रभु ने सबको क्षमा कर दिया। हरि हरि। तो इस तरह से गोपाल चपल का उद्धार हुआ शिवास पंडित के घर पे। तो ये सब लीलाएं हमें सुननी चाहिए, है ना। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी की विशेष कृपा है, वृंदावनदास ठाकुर की विशेष कृपा है कि उन्होंने इतनी सारी विविध लीलाएं हमें दी हैं। और शिवास ठाकुर जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो शिवास ठाकुर ने नवदीप छोड़ दिया और शिवास ठाकुर जो है कुमारहट में जाकर रहे। प्रत्येक वर्ष जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती थी तो शिवास पंडित जो है वो जगन्नाथपुरी भी जाते थे, और जगन्नाथपुरी जब जाते थे तो वहां पर रथ यात्रा में भाग लेते थे। और शिवास ठाकुर की अपना दल था, 7 दल थे रथ यात्रा में संकीर्तन के, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ संकीर्तन करेंगे और नृत्य करेंगे। तो ऐसे 7 दलों में से एक दल था शिवास ठाकुर का, जिनके दास लगे थे गंगादास पंडित, हरिदास, श्रीमान पंडित, शुभानंद ब्रह्मचारी, श्रीराम पंडित और नित्यानंद प्रभु इस नर्तक थे। तो ये देखिए कितना ऑर्गेनाइज था, है ना, चैतन्य महाप्रभु के समय में। ऐसा नहीं कि सब भावावेश में आ रहे हैं और पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है, है ना। कई बार लगता है कि भक्तों को नहीं नहीं हमें ज्यादा मैनेजमेंट में नहीं लगना चाहिए, हम श्रवण की तो नहीं करेंगे केवल, लेकिन देखिए चैतन्य महाप्रभु के संबंध में भी जो है मैनेजमेंट था। और उस समय जब काशी मिश्र जो है और चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलकर इन सभी भक्तों के लिए व्यवस्था करते थे जो जगन्नाथपुरी आते थे रथ यात्रा के लिए, उनके अकोमोडेशन का देखते थे, प्रसाद का देखते थे, और चैतन्य महाप्रभु पर्सनली चेक करते थे कि भक्तों की रहने की व्यवस्था ठीक है ना, कहां पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हाँ, और प्रसाद की सही व्यवस्था है। तो ये कौन देखता था, चैतन्य महाप्रभु। इसका अर्थ यह है कि भावावेश में आने का अर्थ ये नहीं है कि आप सब भूल जाए कि हो क्या रहा है आसपास, नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े व्यवहारिक भी थे, प्रैक्टिकल भी थे। तो इसलिए संकीर्तन रथ यात्रा में देखिए कितना ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम सबको सीखना चाहिए इसे ना, जब भी हमारी रथ यात्रा होती है ये नहीं कि हम स्पॉन्टेनियस हो जाए, बहुत सब जो है राग मार्ग में आ जाए एकदम, और भूल भी जाए कि मृदंग है कि नहीं, या करताल है कि नहीं, कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, साउंड सिस्टम है कि नहीं, सब भाव में आ गए, ऐसा नहीं था। देखिए है ना, यहां पर 7 संकीर्तन दल थे और बड़े ऑर्गेनाइज वे में जो है भाववेश प्रकट होता था, भाव जो प्रकट होता था भक्तों का बड़ा ऑर्गेनाइज वे में होता था, डिसऑर्गेनाइज नहीं थे। और स्वरूप दामोदर का भी एक दल था जिसमें दामोदर पंडित थे, नारायण पंडित थे, गोविंद दत्त, राघव पंडित और गोविंदानंद। फिर तीसरा दल था अद्वैताचार्य का, अद्वैताचार्य का एक दल शांतिपूर्व से भी था, लेकिन अद्वैताचार्य एक नर्तक के रूप में भी थे, वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारीगुप्त, मुकुंद दत्त जो है इसमें चीफ सिंगर थे, और साथ में श्रीकांत, वल्लभ सेन और साथ में हरिदास इसमें मुख्य नर्तक थे। और उसके अलावा जो है चौथा दल था गोविंद घोष का, गोविंद घोष के साथ थे हरिदास, विष्णुदास, राघव पंडित, माधव घोष, वासुदेव घोष, बकरीश्वर पंडित इसमें नर्तक थे। तो ये जो है 4 ऐसे दल हुए, मेन जो मुख्य दल थे ये 4 थे। इसके अलावा जो है कुलिंद ग्राम से रामानंद और सत्यराज भी आए थे, उनका भी एक दल था, और जैसा हमने बताया अद्वैताचार्य का भी एक दल था शांतिपुर से जो आए थे भक्त, और साथ में श्रीखंड से आए थे और नरहरि, और साथ में नरहरि सरकार ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर। तो ये जो संकीर्तन दल था ये किस तरह से नृत्य करते थे, कैसे ये लोग खड़े होते थे, देखिए इसमें जो है 4 जो दल थे वो सामने थे, और उसमें क्या था कि दो चार सामने थे। सामने का मतलब ये है कि एक लेफ्ट साइड पे थे, एक राइट साइड पे थे, और बीच में कितने थे, 2, और इस तरह से 4 बताए गए हैं, 4 जो है सामने और एक लेफ्ट में, सॉरी 4 सामने थे, एक लेफ्ट में था, एक राइट में। जैसे रथ यात्रा ऐसे चल रही ना, तो सामने जो है समझ लीजिए भक्त खड़े रथ को खींच रहे हैं, तो एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे संकीर्तन दल, और बीच में 4 पार्टी थी, 4 दल थे, और एक जो है रथ के पीछे भी था संकीर्तन दल। तो इस तरह से 7 संकीर्तन दल जो है बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में विभाजित किए गए। और ایسا بھی دیکھا بھکتوں نے کہ چیتنے مہاپرو جو ہے کئی بار بھکتوں کو ہوئی تب جو بادشاہ تھے ان کو درشن ہوا کہ چیتنے مہاپرو ساتوں دلوں میں دکھائی دے رہے ہیں. ہری ہری. تو یہ جو ہے وشیش کرپا تھی چیتنے مہاپرو کی, جس طرح سے راس لیلا میں شری چیتنے مہاپرو سوئے برم بھگوان شری کرشن جو ہے انہوں نے اپنا وستار کیا تھا گوپیوں کے مدھیے میں, اسی طرح سے یہاں چیتنے مہاپرو کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سنکیرتن دلوں میں اپنا وستار کیا. ہری ہری. تو اس طرح جب ہتھیار چل رہی تھی تو اس سمے وہاں پہ جو مہاراج پرتاپ روپ کے جو سیوک تھے ہری چندر وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ راجا کے بالکل سامنے جو ہے سواس پنڈت آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرح سے راجا ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں, شاید مہاپرو کے نرتک کو یا سنکیرتن کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو ہری چندر نے سواس پنڈت کو وہاں سے ہٹانا چاہا. تو جب بار بار جو شیواس پنڈت کو وہ ہٹانے کا پریاس کر رہے تھے تو شیواس پنڈت نے پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے یہ, انہیں چاٹا مارا. تو ہری چندر کو تھاپڑ مارا انہوں نے, اور جب چاٹا مارا تو ہری چندر کو بڑا غصہ آ گیا. ہری چندر غصہ آ گیا, وہ اس سے پہلے کچھ کر بیٹھتا, مہاراج پرتاپ نے روک دیا. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو آپ, آپ کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ یہ تو شیواس پنڈت کی وشیش کرپا ہو گئی آپ کے اوپر, آپ کا سوبھاگیہ کہ آج شیواس پنڈت نے آپ کو چاٹا مارا ہے. ہری ہری. تو اس طرح یہ بہت بڑی وشیش کرپا ہے, اس لیے شانتی رکھو. تو شیواس پنڈت کی اس طرح سے وشیش کرپا ہوئی. ایک بار جو ہے شری چیتنیہ مہاپرو جو ہے نکلے نہیں کاشی مشر کے گھر میں وہ رہ رہے تھے اور وہاں سے نکلے نہیں باہر, تو ہزاروں کی تعداد میں بھکت جو ہے باہر سنکیرتن کر رہے تھے. اور اس بار سبھی بھکت لوگ مل کر جو ہے گورنگ مہاپرو کے ناموں کا اچارن کر رہے تھے, ہے نا. تو اس پرکار جو سنکیرتن کرنے لگے, مہاپرو کا گردار کرنے لگے, تو چیتنیہ مہاپرو کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے, سب بھکت لوگ جو ہے باہر میرا نام لے رہے ہیں, ہے نا, ان سب کو کرشن کا نام لینا چاہیے. لیکن بھکتوں کا پریم دیکھ کر کہ بھکت لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کا درشن کریں باہر آئے, تو چیتنیہ مہاپرو باہر آ گئے اور انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہری ہری. تو بھکت لوگ سب جو ہے بڑے بھاو وبھور ہو گئے دیکھ کر, مہاپرو کا ساکشات درشن پراپت ہوا سب کو. تو شیواس پنڈت بعد میں بولے دیکھیے مہاپرو دیکھیے آپ تو بھیتر جا کے چھپ گئے اور پھر باہر آ گئے, ہے نا, یہ تو بڑا عجیب سا ویوہار ہے آپ کا کہ آپ بھیتر چھپ گئے اور آپ پھر آپ باہر آ رہے ہیں. یہ تو بالکل ویسے ہی ہوا کہ سوریہ اپنے آپ کو چھپانے کا پریاس کر رہا ہے لیکن پرکاش تو پھیلے گا ہی, آپ کتنا بھی بھلے اپنے آپ کو بھیتر چھپا لیں لیکن آپ کا پرکاش تو چاروں طرف پھیلنا ہی پھیلنا ہے, اس لیے بھیتر رہنے کا کیا لابھ. تو چیتنیہ مہاپرو بولے کہ آپ سب جو ہے مجھے ہیومیلیٹ کر رہے ہیں, اس طرح سے آپ لوگ یہاں میرا ناموں کا کیرتن کر رہے ہیں. تو اس طرح سے شیواس پنڈت کے ساتھ انیکوں لیلائیں ہوئی. ایک استھان پہ جب جگناتھ رتھ یاترا ہو گئی تھی, اس کے پانچویں دن پہ, جس دن ہیرا پنچمی کا اتسو ہوتا ہے, تو ہیرا پنچمی کے دن لکشمی جی نے وچار کیا, انہوں نے اپنے داسیوں کو بلایا, انہوں نے کہا دیکھو ابھی تک یہ آئے نہیں جگناتھ جی واپس, یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگلے دن لوٹ آئیں گے اور اب پانچواں دن ہو گیا ہے ابھی تک جگناتھ جی واپس نہیں آئے, کیا کارن؟ تو اس لیے ہم ہمیں چلنا چاہیے, جائیے ہم خبر لیتے ہیں جا کے سندراچل میں ہو کیا رہا ہے. تو اس طرح سے پھر لکشمی جی چلی اپنے داسیوں کے ساتھ, پہنچی وہاں پر سندراچل پہنچے, جگناتھ جی کے رتھ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, جگناتھ جی کے رتھ کے ساتھ ان کے سیوک بھی تھے, جگناتھ جی کے سیوک بھی کھڑے تھے. تو جا کر داسیوں نے کیا کرنا شروع کیا, رتھ کو پیٹنا شروع کر دیا, رتھ کو زور زور سے پیٹنا شروع کیا. تو جگناتھ جی کے سیوکوں نے بولا کہ آپ ایسا نہ کریں, ہے نا, آپ زور زور سے پیٹ رہے ہیں یہاں پر, آپ کو ہم آشواسن دیتے ہیں کہ کل واپس آ جائیں گے جگناتھ, کل واپس آ جائیں گے, آپ کرپا کر کے ایسا نہ کریں. تو لکشمی جی نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم واپس جاتے ہیں. پھر تو لکشمی جی جو ہے پھر واپس آ گئے. تو یہ دیکھ کر شیواس پنڈت جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, شیواس پنڈت نے کہا دیکھیے ہماری لکشمی جی کا ایشوریہ دیکھیے, یہ ہے ویکنٹھ کا ایشوریہ, اور آپ کی جو گوپیاں کیا کرتی ہیں, یہ تو کیول دودھ لے کر جاتی ہیں اور دہی متتی ہیں, تو یہ کیا ہے لتاؤں میں اور کنجوں میں گھومتی رہتی ہیں, ہمارے لکشمی جی کا ایشوریہ دیکھو. تو شیواس پنڈت ایسا دکھائی پڑتا تھا کہ وہ ایشوریہ سے پربھاوت ہو گئے. سشی چیتنیہ مہاپرو نے کہا شیواس آپ نارد منی ہو کہ آپ کے اوپر تو پورا ایشوریہ کا پربھاو ہے, तो श्रीवास पंडित को जब ऐसा कहा तो स्वरूप दामोदर वहां मौजूद थे, तो स्वरूप दामोदर ने फिर वृंदावन के ऐश्वर्य के बारे में वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने कहा श्रीधाम वृंदावन का जो ऐश्वर्य है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। द्वारका और वैकुंठ का ऐश्वर्य जो है वो तो एक बूंद के समान भी नहीं है। वृंदावन का ऐश्वर्य अगर आप जान जाओगे तो फिर उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। ये जो श्रीधाम वृंदावन है इसका स्वाभाविक ऐश्वर्य है, नेचुरल ऑपुलेंस है। ये नेचुरल ऑपुलेंस है जिस तरह से श्री रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि घी का कटोरा है, ऊपर से घी जो है घी दिख रहा है, बिल्कुल घी ही दिख रहा है, लेकिन उसके भीतर क्या है, सोना है। जैसे सोने को घी से ढक दिया हो लेकिन भीतर क्या है, सोना है। तो ऐश्वर्य यहां दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन ऐश्वर्य से भरा हुआ है श्रीधाम वृंदावन। यहां चिंतामणि धाम है, ये तो यहां कल्प वृक्ष है, ये काम धेनु गाय है। और यहां पर हम देखते हैं कि इसी चीज की कोई कमी नहीं है। यहां जो भक्त है क्या करते हैं, कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी, है ना। तो यहां पर जब भक्त लोग जब बोलते हैं, जब यहां पर इनके परिकर बोलते हैं, श्री कृष्ण के परिकर बोलते हैं, पार्षद बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो गा रहे हैं। जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि नृत्य कर रहे हैं। सोच के देखो अगर ये वाकई में गाएंगे और वाकई में जब नृत्य करते होंगे तो उसकी तो तुलना भी नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते आप। ये है फुलुंग धाम का, श्रीधाम वृंदावन का ऐश्वर्य, जिसकी तुलना कहीं किसी से नहीं की जा सकती। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु अति प्रसन्न हुए। और श्रीवास पंडित जब इन्होंने सुना, जब वृंदावन धाम का ऐश्वर्य सुना, वृंदावन धाम के ऐश्वर्य के बारे में श्रवण किया, तो श्रीवास पंडित भाव वेश आकर जोर जोर से हंसने लगे, हरि हरि, और अपने हाथों को पीटने लगे। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए इसको सुनकर। तो ये था, ये सब श्रीवास पंडित से संबंधित लीलाएं हैं। इन सब लीलाओं को हमें श्रवण करना चाहिए। शीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर से वर्णन किया है। श्री चैतन्य चरितामृत ऐसा ग्रंथ है जिसको प्रत्येक भक्त को पढ़ना चाहिए। जब तक हम चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ेंगे हमें संकीर्तन आंदोलन के बारे में नहीं पता चलेगा, हम नहीं समझ पाएंगे महाप्रभु के आंदोलन। केवल श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे पर्याप्त नहीं है, श्रीमद् भागवत को पढ़ने का भी अधिकार प्राप्त होता है जब हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने यह बताया कि सबसे पहले हमें चैतन्य चरितामृत पढ़े, उसके बाद श्रीमद् भागवत पढ़े। जब चैतन्य चरितामृत पढ़ के आप भागवत पढ़ेंगे तो आपको भागवत का वास्तव मर्म, वास्तविक जो मर्म है वो समझ में आएगा। एक चैतन्य चरितामृत में विस्तार समर्थ है ना। इसलिए भक्तों की कृपा से हम देखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने एक बार बताया, उन्होंने बताया कि अगर मायापुर में जैसे बाढ़ आती है, गंगा जी की बाढ़ आती है, उन्होंने बताया कि अगर बाढ़ जब आती है और आपके ग्रंथ हाथ में ग्रंथ हो, भगवद गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, चैतन्य चरितामृत हो, और गंगा जी का प्रभाव इतना बढ़ जाए तो आप भगवद गीता को छोड़ दीजिए क्योंकि आप उठा नहीं पाएंगे। और भगवद गीता को छोड़ने के बाद फिर भी लगता है कि गंगा जी की धारा जाए और तेजी से बह रही है, गंगा जी और ऊंचाई में आ रही है, तो भागवत भी छोड़ दीजिए। हाथ में जब चैतन्य चरितामृत हो तो फिर क्या करिए आप, चैतन्य चरितामृत के साथ ही आप जो है डूब जाइए क्योंकि आप डूबेंगे नहीं, हरि हरि। तो चैतन्य चरितामृत के साथ जब आप प्रवेश करेंगे गंगा जी के भीतर तो आपका जो है कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि आपको घोर प्रेम में जो है आप डूब जाएंगे। तो इस तरह से आज बहुत ही पवित्र दिन है श्रीवास पंडित का, तिरुभाव दिवस है आज। विश्वनाथ श्रीधर स्वामी महाराज का भी आविर्भाव, क्षमा करिए, श्रीवास पंडित का आविर्भाव है और विश्वनाथ श्रीधर स्वामी महाराज का आज तिरुभाव दिवस। श्रीधर स्वामी महाराज बड़े सौभाग्यशाली है कि श्रीवास पंडित के आविर्भाव के दिन को देह त्याग करने का, सीधा मायापुर में वो भी देह का परित्याग करने का मौका मिला। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और विश्वनाथ श्रीधर महाराज का काफी संग हमें मिला। और यहाँ पंजाबी बाग में भी आए थे, जब पुराना मंदिर था वहां पे पंजाबी बाग में भी आए थे, रोहिणी में भी गए थे वहां पे प्रोग्राम करने के लिए, और इसके अलावा हमारे पंशील मंदिर में भी आए थे, ईस्ट ऑफ कैलाश में तो आए ही थे, तो काफी बार यहाँ पर आए थे। उनको जॉली जॉली स्वामी कहते थे सब लोग, है ना। तो महाराज काफी प्रचलित थे कि वो हमेशा काफी भक्तों के साथ जोक करते थे और भक्त बड़े खुश होते थे उनके साथ। तो एक बार की बात है, ये जो घटना बताना चाह रहे हैं क्योंकि आज तिरुभाव है उनका। श्रीधर स्वामी जो है उस समय कनाडा में थे और उनको लिवर में जो है काफी पानी भर गया था, मतलब अंतिम समय में थे, तो डॉक्टर से जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि आप उनको मायापुर ना ले जाए। उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा मायापुर, कुछ भी हो जाए। तो फिर वहां से कैनेडा से मायापुर लाया गया, और मायापुर जो लाया गया तो फिर उन्होंने उनसे कहा, वो फिर उसके बाद जब प्रभुपाद जी का अभिषेक उन्होंने कर लिया, श्रील प्रभुपाद जी का अभिषेक समारोह हुआ था, और अभिषेक के उपरांत उन्होंने इच्छा प्रकट की कि काश मैं पंचतत्व, यानी कि अभिषेक जो हो रहा है जिस दिन पंचतत्व का अभिषेक हुआ था ना, पंचतत्व की स्थापना हुई थी शायद उसी साल, तो पंचतत्व का अभिषेक वो करना चाहते थे। तो वो इच्छा भी महाप्रभु ने उनकी पूरी की, और क्योंकि उस समय कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो गया था कि कौन ऑल्टर में जाएगा, लेकिन श्रीधर महाराज को मौका मिला कि उन्होंने अभिषेक किया, श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया, और फिर उनकी इच्छा हुई कि गौर पूर्णिमा तक रहे और फिर से महाप्रभु का अभिषेक करें, वो इच्छा भी महाप्रभु की पूरी कर दी। हरी हरी। और बहुत निडर होके, निर्भीक होके श्रीधर महाराज ने जो है शरीर छोड़ा आज के दिन शिवास पंडित के। देखिए कितना लंबा रह गए, एक महीने से ऊपर रह गए श्रीधर महाराज। तो इससे पता चलता है कि अगर हमारे हृदय में लालसा हो महाप्रभु की सेवा करने के लिए, तो महाप्रभु हमारे लिए सब प्रकार की व्यवस्था करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इस उन्होंने तमाम कृष्ण गोस्वामी महाराज भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के तिरुभाव दिवस के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, और श्री गौर गोविंद महाराज ने भी भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर के आविर्भाव दिवस के दिन शरीर छोड़ा। तो ये सब व्यवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं अपने उन भक्तों के लिए जो इस संकीर्तन आंदोलन के लिए समर्पित है। तो आज बड़ा ही पवित्र दिन है, तो आप सब इन सभी वैष्णव आचार्यों की कृपा लें, शिवास पंडित का आशीर्वाद लें, उनकी कृपा की याचना करें, तो निश्चित रूप से हम सबको भी महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। श्रील शिवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील श्रीधर स्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, समवेद भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद। पात्रता आती है सेवा से ही, सेवा करने के लिए पात्रता चाहिए, लेकिन पात्रता कैसे प्राप्त हो वो भी सेवा के द्वारा ही पात्रता आएगी। यानी कि वो सेवा जो गुरु के द्वारा दी जाती है, उस सेवा को जब करते हैं ठीक से करते हैं, तो फिर हमें पात्रता मिलेगी कि आप निरंतर भजन कर सकें। निरंतर भजन करने की पात्रता मिलेगी जब हम लोग गुरु और वैष्णवों को प्रसन्न करेंगे। ठीक। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की कनाई प्रभु।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
जो प्रथम गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाए थे खेचुरी ग्राम में महाप्रभु के तिरुभाव के बाद, तो वो कितने वर्ष के उपरांत में ये प्रथम गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया गया
था? एक्चुअली हमें कुछ याद नहीं है, इतना तो याद नहीं मुझे, लेकिन महाप्रभु के जाने के बाद पहली बार फेस्टिवल जो मनाया गया वो नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा मनाया, लेकिन इससे पहले भी गौर पूर्णिमा मनाए गए थे। शशि माता तो स्वाभाविक है कि जब भी चैतन्य महाप्रभु का जब जन्मदिन हुआ होगा तो शशि माता वो भी सेलिब्रेट कर रही होगी, लेकिन ये बताया गया चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने पहली बार बड़े ही विशाल रूप में इसको किया।
और बड़े जो अंबिका काल में गौरीदास पंडित
ने
भी मनाए थे।
हाँ, हृदय क्षेत्र में वहां भी मनाया। ठीक है। हरे कृष्ण।